नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृषे नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जैन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नष्ट शौचा मूढ़ धियो जटा भस्मास्ति धारिण विसंतु शिव दीक्षायां जत दैवं सुरासवं नष्ट शौचा मूढ़ धियो जटा भस्मास्थि धारिणः विसन्तु शिव दीक्षायां जत्र दैवं सुरासवं ब्रह्म च ब्राह्मणांश्चैव यद्युजं परिनिन्दथ सेतुं विधारणं पुंसाम् अतः पाषण्डमाश्रितः पढ़िए
Yeah. नष्ट शौचः सुचिता, पवित्रता का परित्याग करके मूढ़ धियः मूर्ख, जटा भस्म अस्ति धारिणः, जटा राख तथा हड्डियां धारण किए विषंतु प्रवेश करे शिव दीक्षायां, शिव पूजा की दीक्षा में, यत्र जहां दैवम ईश्वरी है, सुरा आसवम मदिरा तथा आसव। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं वे इतने मूर्ख होते हैं कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं और शिव की उपासना के दीक्षा लेने के बाद वे मदिरा, मांस तथा अन्य ऐसी ही वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। तात्पर्य, अनियमित जीवन बिताने वाले मूर्ख प्राणी मदिरा तथा मांस का सेवन करते हैं, लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, नित्य स्नान नहीं करते और गांजा पीते हैं। ऐसे आचरण से मनुष्य दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाता है। शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण में मुद्रिकाष्टक होता है जिसमें कभी कभी यह संस्तुति की जाती है कि मनुष्य स्त्री योनि पर अपना आसन लगाए तभी उसे निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ऐसी उपासना में मदिरा अथवा ताड़ी की आवश्यकता पड़ती है। शिव आगम अर्थात शिव आराधना विधि संबंधी ग्रंथ के अनुसार इसकी भेंट भी चढ़ाई जाती है। ब्रह्म बोलिए, वेद च तथा ब्राह्मणान ब्राह्मणों को च तथा एव निश्चय ही यत क्योंकि यूयम तुम सब परिनिंदथ निंदा करते हो से तुम वैदिक सिद्धांत विधारणम धारण करते हुए पुंसाम मनुष्य जाति का अतः इसलिए पाषंडम नास्तिकता आश्रिता शरण ले रखी है। अनुवाद, भृगु मुनि ने आगे कहा, चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है। तात्पर्य, भृगु मुनि ने नंदीश्वर को श्राप देते हुए कहा कि वे सब इस श्राप से नास्तिक तो होंगे ही, किंतु वे पहले से नास्तिक पद तक गिर चुके थे क्योंकि उन्होंने मानवीय सभ्यता में परम स्रोत वेदों की निंदा की थी। गुणों के अनुसार श्रेणियों में विभाजित मानवीय सभ्यता वर्णाश्रम पर आधारित है, यथा बुद्धिमान वर्ग, युद्ध प्रिय वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। वेद सही सही निर्देश देते हैं कि आत्म अनुशीलन तथा आर्थिक उन्नति के साथ ही इंद्रिय तृप्ति का नियम कैसे किया जाए, जिससे अंततः भौतिक कल्मश से छूटकर मनुष्य अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान अहम ब्रह्मास्मि को प्राप्त हो। जब तक मनुष्य सांसारिक कलमश में रहता है तब तक वह जलचर से लेकर ब्रह्मा तक अपनी योनियां बदलता रहता है, किंतु इस जगत में तो मनुष्य जीवन सर्वोच्च सिद्धि है। वेद वह मार्ग दिखाते हैं जिससे मनुष्य अगले जीवन में ऊपर उठ सके। ऐसी शिक्षा के लिए वेद माता तुल्य हैं और वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण पिता तुल्य हैं। अतः यदि कोई वेदों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है तो वह नास्तिक स्तर पर गिर जाता है। संस्कृत में नास्तिक शब्द प्रयुक्त हुआ है जो उस मनुष्य का द्योतक है जो वेदों में विश्वास नहीं करता और धर्म के कुछ मनगढ़ंत पद्धति का निर्माण करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी नास्तिक हैं। अहिंसा के सिद्धांत की स्थापना के लिए भगवान बुद्ध ने वेदों को मानने से साफ इनकार किया और बाद में शंकराचार्य ने इस धर्म को भारत में रोका और इसे देश के बाहर निकालने के लिए बाध्य किया। यहाँ पर ब्रह्म च ब्राह्मणान कहा गया है। ब्रह्म का अर्थ है वेद। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त है। वेदों का कथन है कि मनुष्य को अपने आप को ब्रह्म समझना चाहिए क्योंकि वह वास्तव में ब्रह्म है। यदि ब्रह्म अर्थात वैदिक ज्ञान की निंदा की जाए और वैदिक ज्ञान के ज्ञाता ब्राह्मणों की निंदा की जाए तो फिर यह मानवीय सभ्यता कहाँ रहेगी। भृगु मुनि ने कहा, ऐसा नहीं है कि तुम लोग मेरे साप से नास्तिक बनोगे, तुम तो पहले से नास्तिक हो इसलिए तुम निंदनीय हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
प्रजापतियों के यज्ञ में भगवान शिव ने कुछ ऐसा आचरण किया जिससे कई लोग क्षुब्ध हो गए। साधारण सी बात थी, भगवान शिव ने अपने ससुर को प्रणाम नहीं किया, प्रजापति दक्ष को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। इस बात से क्षुब्ध होकर प्रजापति दक्ष भगवान शिव के विषय में बहुत गाली बकने लगे। अंत में सब लोग रुक रहे थे, फिर भी साप दे दिए भगवान शिव को, और साप इतना कि भगवान शिव का पगार बंद कर दिए। देवताओं के समाज में उनकी बहुत बड़ी स्थिति है, लेकिन साप उन्होंने कह दिया कि आज से शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। यज्ञ भाग प्राप्त होने से ही देवता जीते हैं, वही उनका वेतन है। लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि देवताओं के साथ अब यज्ञ में इसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने साप दिया भगवान शिव को। इस बात से क्षुब्ध होकर के, क्रोधित होकर के भगवान शिव के वाहन श्री नंदीश्वर जी खड़े हो गए। खड़े होकर के वे दक्ष प्रजापति को ही नहीं, उनके संबंध से सभी ब्राह्मणों की और वेद की निंदा करने लगे। जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो उस समय व्यक्ति यह नहीं देखता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, बस बोल रहा हूं। वो बेसिर पैर की बातें बोलते रहे नंदीश्वर जी, वो तो पूर्ण क्रोध में थे ही। रोष कसाय दोषिता, रोष क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल हो रही थी और दक्ष प्रजापति को साप देने लगे। तो दक्ष प्रजापति को ही साप नहीं दिए, क्योंकि दक्ष प्रजापति एक ब्राह्मण थे और इस कारण वे ब्राह्मणों की भी निंदा करने लगे और ब्राह्मण के साथ साथ वेदों की भी निंदा करने लगे। अब इस बात से क्रोधित होकर के भृगु मुनि खड़े हो गए। वो चाहे माइक के पास चले गए होंगे या हैंड माइक होगा, लगे बोलने, सब बाजी होने लगे। नंदीश्वर बोल रहे थे और उसी बीच में भृगु मुनि खड़े हो गए। भृगु मुनि बहुत बड़े महर्षि हैं, महर्षि नाम भृगु राम। भगवान गीता में बताते हैं कि मैं महर्षियों में भृगु हूं, बहुत प्रभावशाली प्रतापी ऋषि हैं, जिनके पदाघात को भगवान ने सहन किया था। ब्राह्मणों की निंदा और वेदों की निंदा से उनको बहुत दुख हुआ, वे लगे नंदीश्वर को साप देने। और नंदीश्वर को साप दे रहे थे प्लस शिव जी के जितने भी अनुयायी होंगे उनको साप देने लगे। इस तरह परस्पर सापबाजी होने लगी। पहले लोग कुछ कह देते थे वही प्रभावशाली हो जाता था कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो भृगु जी भी बैलेंस खो दिए, वे भी क्रोध में हो गए और नंदीश्वर तो क्रोध में थे। यदि कोई व्यक्ति गलती करता है, गलत बोलता है, तो गलत बात से उसका समन नहीं किया जा सकता, वो बात और बिगड़ती जाती है। तो भृगु जी का इस तरह से क्रोधित हो जाना और पूरा शैव समाज को साप देना, यह उनकी अतिशय क्रोधवशता का परिचायक। वे साप देने लगे कि जितने भी शिव के अनुयायी हैं ये सभी पाखंडी हो जाएं। पाखंडी मतलब ये वेद को न माने। ये तो भवितव्यता थी, होने वाला था, कि भृगु जी के मुख से सब निकलने लगा कि हम साप देते हैं इन लोगों को, नष्ट शौचालय, ये कभी स्नान आदि न करें। स्नान तो ऐसे ही आदमी नहीं करना चाहता है, अब भृगु जी का साप हो गया। नष्ट शौचालय, इनमें शौच न रहे, ये बहुत गंदे रहे। इसके साथ साथ इनकी बुद्धि मंद रहे, मूढ़ धिया। मूढ़ मतलब जिसमें विवेक न हो, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या किस बात में मेरा हित है, किस में नहीं है, इसको न समझ पाए और उल्टा समझ ले बुद्धि, ऐसी बुद्धि को मूढ़ बुद्धि कहते हैं। तो भृगु जी ने साप दिया, शिव जी के अनुयायी सभी मूढ़ बुद्धि के हो जाए। बुद्धि भी खराब हो जाए, शरीर भी गंदा रहे और ऊपर से जटा भस्म अस्थि धारण, ये सभी जटा राख और हड्डी धारण करें। साफ दे रहे जटा भस्मास्थि धारण, जटा भस्म और अस्थि धारण, इसको धारण किए रहे, लिए रहे, चाहे पहने रहे या पॉकेट में कहीं भी रखें रखे रहे। साप देते समय क्रोधाविष्ट व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। सबसे बड़े महर्षि भृगु मुनि का ये सब उद्गार है, उन्होंने साप दिया, उसके विषय में मैत्रेय जी कहते हैं ब्रह्म दंडम दुरत्ययम्, ऐसा ब्रह्म दंड दिया, ब्रह्म दंड मतलब ब्रह्म साप, दुरत्ययम्, जिसकी निवृत्ति नहीं होती, जिसका पाप अनिस्तार होना कठिन था, ऐसा साप दिया तो साप से मुक्ति पाना कठिन था। दुरत्ते ब्रह्म दंडम, साप से दोनों पक्ष का कोई भी हित नहीं होता, अवश्य नाश होता दोनों पक्ष का। जैसे एक कथा है नवम स्कंध में कि महाराज निमि जो मैथिल राजा थे, उनके मन में एक बार विचार हुआ कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा यज्ञ किए। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को कहा कि आप हमारा यज्ञ पूरा करा दीजिए, क्योंकि आप पुरोहित हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा अभी मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, देवताओं का निमंत्रण है, वहाँ यज्ञ करा करके आऊँगा तब आपका यज्ञ करूँगा। इतना कह करके वशिष्ठ मुनि चले गए। तो फिर महाराज जनक विचार करने लगे कि बहुत देर हो रही है और जीवन बहुत क्षणिक है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, अतः हमें यज्ञ प्रारंभ कर दिए। वशिष्ठ जी की प्रतीक्षा नहीं किए, यज्ञ प्रारंभ कर दिए। वशिष्ठ जी जब स्वर्ग से आए तो देखे कि यहाँ यज्ञ हो चुका और बड़ी बड़ी दक्षिणा अन्य ब्राह्मण लोग लिए, इनको पता लग गया किसको कितनी दक्षिणा मिली। तो वशिष्ठ जी पैजामा से बाहर हो गए, बहुत क्रोधित हुए और जनक जी को साप देने लगे, तुम गुरु की बात नहीं मानते हो, तुम अभी मर जाओ, मरने से पहले निमि महाराज साप दिए, तुम लोह वश धर्म नहीं जानते हो, इसलिए तुम भी मर जाओ। तो दोनों गुरु और शिष्य ऐसे पास में ही गिर गिर करके मर गए। वशिष्ठ मुनि ने फिर जन्म ग्रहण किया, अब ब्रह्मा जी के पुत्र थे, लेकिन अब उर्वशी के गर्भ से जन्म लिए और ब्राह्मणों ने निमि महाराज के शरीर को सुरक्षित रखा और वे कहने लगे कि आप इसी शरीर में जी जाइए, हम लोग वैदिक मंत्र से आपको पुनर्जीवन दे देंगे। तो निमि महाराज उस शरीर में बोले, आखिर एक न एक दिन इस शरीर का वियोग होगा, इसलिए मैं इस शरीर में आना नहीं चाहता। जस जोगम नवांछन्ति वियोग वियोग भास, मैं बिना देह के ही रहूंगा। तो फिर ब्राह्मण लोग उनकी व्यवस्था के जो भी हो, शरीर जीवित हो गया लेकिन वे शरीर में नहीं रहते हैं, इसीलिए उनको विदेह कहा जाता है, बिना देह के। देह में थोड़ी भी अहंता बुद्धि नहीं है कि मैं देह हूँ। जन्म से ही उस वंश के लोग परम ज्ञानी परम भक्त होते हैं। तो ये सांप की दशा हो गई, दोनों का नाश हो गया, दोनों में हित किसी का नहीं हुआ, गुरु वशिष्ठ जी और निमि महाराज। तो इसी तरह भृगु मुनि जो सांप दे रहे हैं, तो इससे किसी का हित नहीं होगा इनके पक्ष का, और विपक्ष का अहित तो हो ही जाएगा। तो इस तरह साप होने लगा। साप में भृगु मुनि कह रहे हैं कि तुम ब्राह्मण की और वेद की निंदा कर रहे हो, जो कि सेतुम विधारणम पुंसा। इस संसार में वर्ण और आश्रम के अनुसार चलने वाले मनुष्य वेद के आधार से ही चार पुरुषार्थ के प्राप्त करते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करते हैं। वेद ही मनुष्य समाज में ये सब नियम लागू किया है, बताता है कि किस किस को कैसे काम करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। तो सबसे अधिक उपकारी मनुष्यों के लिए वेद है, और वेद को पढ़ाने वाले धारण करने वाले ब्राह्मण भी परम उपकारी है। और तुम ब्राह्मण और वेद की निंदा कर रहे हो, यद्यम परिनिंद था अतः पाखंड माश्रिता, तुम पाखंडी हो जाओ। और साप दे विसंत शिव दीक्षायाम जत्र दैवम सुदासवम, शिव दीक्षायाम शिव के पूजा की दीक्षा जो लेंगे वे सब पाखंडी हो जाए। उनके लिए शिव के अनुयायियों के लिए सुरासव, सुरा और आसव, शराब और आसव, वृक्ष से निकलने वाला आसव ताड़ी, यही दैव जैसे आदरणीय हो। दैवम का अर्थ है इष्ट देव की तरह परम आदरणीय हो। उनको ताड़ी पीना, गांजा पीना, मदिरा पीना इष्ट देव के समान प्रिय लगे, उसके बिना वे ना रह सके। इस प्रकार समग्र शिवानुचरों को उन्होंने साप दिया। यदि नंदीश्वर दक्ष के संबंध से ब्राह्मणों की निंदा किए, ब्राह्मणों को साप दिए, तो ये भी दक्ष के संबंध से नहीं। नंदीश्वर के संबंध से सब शिव भक्तों को साप दिए। विसंत शिव दीक्षायाम जत्र दैवम सुरासवम, जत्र जिस समाज में, जिस शैव मंडली में, सुरासवम दैवम, सुरा और आसव ही दैव है, दैव परम प्रिय परम आदरणीय। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि ये तो भवितव्यता थी, होना ही था, भृगु जी का साप भी उसमें बहुत काम किया। नंदीश्वर ने साप दे दिया था कि ब्राह्मण सभी भिखमंगा हों और ये कुछ भी तो तपस्या विद्या आदि अर्जन करें तो उसका उपयोग केवल देह और परिवार चलाने में करें, मुक्ति के लिए नहीं। ये बहुत बड़ा साप था ना, सभी ब्राह्मणों को साप दे। इसी से क्रोधित होकर भृगु जी नंदीश्वर और शिव भक्तों को साप दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि सेतुम विधारणम पुंसाम, पुंसाम वर्णाश्रम का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के सेतु मर्यादा को भी धारण धारण करने वाले हैं वेद। वेद इस जगत में है, मनुष्य समाज में, इसीलिए मनुष्य समाज टिका हुआ है और ब्राह्मण उस वेद को पढ़ाने वाले इस जगत में है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन वेद की और ब्राह्मण की कोई निंदा करे तो इससे जगत को बहुत भारी क्षति हो जाएगी। अभी संसार में भगवद गीता है, उपनिषद है, श्रीमद् भागवतम है, तो मनुष्य समाज में कुछ लोगों को ज्ञान है ठीक ठीक, और यह जगत के लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे इस वैदिक ज्ञान का सर्वत्र प्रचार हो, जिससे मानव की रक्षा हो सके, सभी सुख से जिए और सुख से जी करके भगवान की भक्ति करें और अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त करें, मुक्ति प्राप्त करें। परंतु यदि वेद नहीं रहेगा, ये शास्त्र नहीं रहेंगे और इनकी शिक्षा देने वाले ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो जगत में सब जगह अंधकार है, कोई आशा नहीं किसी लौकिक सुख की या परलौकिक सुख की, और मुक्ति की तो कोई गिनती ही नहीं होगी। सारा संसार विषय भोग में पड़ जाएगा और नष्ट हो जाएगा, मनुष्य फिर मनुष्य नहीं रह जाएंगे। आप लोग देखते ही हैं इस समय संसार में किस तरह भोगों के लिए संघर्ष हो रहा है। प्रत्येक मानव ग्रुप इसी फेर में है। किसी भी प्रकार से हमारी अर्थ शक्ति बढ़नी चाहिए। किस लिए अर्थ? वो हमें इंद्रिय भोग देने के लिए। सब जगह जीवन अस्त व्यस्त है। स्त्रियों की और बच्चों की सुरक्षा नहीं हो रही है। बहुत बड़ा संकट है। यह केवल इसीलिए है कि जो वेद रचे गए भगवान के द्वारा दिए गए कि मानव के हित के लिए ज्ञान देने के लिए, लेकिन उन्हें वैदिक ग्रंथों का तिरस्कार हो रहा है और उनको पढ़ने पढ़ाने वाले ब्राह्मणों का पोषण नहीं हो रहा है। भगवान की जो सृष्टि है तो सृष्टि करके उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ दिया, वेद दिया मनुष्यों के लिए। भगवान ने मानव सृष्टि करके ऐसे छोड़ नहीं दिया कि अब जियो खाओ। कैसे जिएगा, कैसे खाएगा आदमी, क्या बोलेगा, कैसे चाल चलेगा, कैसे व्यवहार करेगा, एक एक बात का उन्होंने वेद में सब कुछ वर्णन किया। छोटी छोटी बातों को भी बड़े विस्तार से भगवान ने समझाया। एक एक क्रिया का बहुत महत्व है। सवेरे उठेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, दातुवन करने से लेकर, और इन सब बातों का वर्णन है, बड़ी से बड़ी बातों का और छोटी से छोटी बातों का। इन दातुवन कैसे करेंगे, कितनी बड़ी दातुवन होनी चाहिए, किस तरफ मुंह करके बैठेंगे, ये सब वर्णन है स्मृति ग्रंथों में। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संसार में अनेकों स्त्रियां हैं, तो किस स्त्री से हम पानी ग्रहण करेंगे, किससे संपर्क रखेंगे, स्त्री पत्नी का भाव। उन्होंने बहुत शिक्षा दी है। स्त्री समाज की रक्षा के लिए और बच्चों की रक्षा के लिए तथा वृद्धों की रक्षा के लिए विशेष बल दिया है। ब्राह्मण, वृद्ध, स्त्री और बालक, स्त्रियां ही मानव समाज को ठीक से रखने में समर्थ है। अगर उन्हें ठीक से ट्रेनिंग मिले तो वे बच्चे को कृष्ण कॉन्शियस बना सकती हैं, क्योंकि बच्चा अधिक से अधिक समय माँ के साथ रहता है। माँ के उदर में 10 महीने 9 महीने रहता है और इसके बाद जन्म लेकर के माँ की गोद में ही वो रहता है। तो इसीलिए स्त्री को कृष्ण कॉन्शियस होना बहुत आवश्यक है, जिससे वो अपने बच्चे को कृष्ण भक्ति की शिक्षा दे सके और बच्चों को शिक्षा देना इसलिए जरूरी है कि वह बचपन ही मनुष्य जीवन का फाउंडेशन है, आधार है, अगर बचपन में अच्छे संस्कार पड़ गए तो बहुत काल तक रहेंगे, और वृद्ध का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब वृद्ध के वैकुंठ गमन का निकट समय आ गया है, तो इसीलिए उसकी चेतना कृष्ण में रहे, ठीक से भगवान का स्मरण कर सके, नाम जप आदि कर सके, जिससे उसका यह जीवन सफल हो जाए, भगवान के पास जाए। और इन सबके लिए ब्राह्मण का पोषण बहुत आवश्यक है। कौन इन बातों को बताएगा, वेद शास्त्र कौन पढ़ेगा? ब्राह्मण यदि ठीक रहेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, इस शरीर में जैसे मस्तक है वैसे मानव समाज में ब्राह्मण की बहुत आवश्यकता है। यदि सब अंग ठीक है, हाथ ठीक है, पैर ठीक है, लेकिन यदि दिमाग पागल हो गया तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। ऐसे समाज में ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों को सुख से रखना बहुत जरूरी है, सारे समाज को सुखी रखने के लिए। भृगु मुनि जो कह रहे हैं कि ब्रह्म च ब्राह्मणांश्च जप जूयम् परिनिन्दत, अरे तुम वेद की और ब्राह्मणों की निंदा कर रहे हो पाखंडी। जो सबसे अधिक उपकारी वस्तुएं हैं, लोग हैं इस संसार में, सबका हित करने के लिए, समग्र मानव जाति का और समग्र सृष्टि में स्थित जीवों का हित करने के लिए ब्राह्मण है। और वेद शास्त्र है, ये वेद शास्त्र की तुलना अन्य मनुष्यों के कंकक्षण से नहीं की जा सकती, यह भगवान का दिया हुआ वचन है। ऐसे हित होगा, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए, सब सिखाने के लिए है। ऐसा नहीं कि अल्पज्ञ मनुष्यों की कोई कल्पना है, ये कल्पनाएं तो बदलती रहती हैं, लेकिन हमारा वैदिक साहित्य ये बहुत समृद्ध है, भगवान ने इसे दिया है, उसमें कोई चार प्रकार का दोष नहीं है। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाटव आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोष है सब। भ्रम, भ्रम का अर्थ है किसी वस्तु को ठीक से नहीं समझना या उल्टा समझ लेना, उसको भ्रम कहते हैं। तो वैदिक ग्रंथों में ये सब दोष बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक ठीक समझ करके देख करके वर्णन है कि यही उचित है, यही करना चाहिए। और प्रमाद नहीं है, प्रमाद का अर्थ है कुछ भूल हो जाना। दुनिया में और सब ग्रंथ और सब जितने हैं सब इस दोष से भरे हुए हैं, बस उनमें प्रमाद है। भ्रम अलग दोष है, प्रमाद अलग है। जैसे हम लोग लिखते हैं, बहुत सावधानी से लिखते हैं, लेकिन इसके बाद अगर पढ़ें तो एक दो गलती जरूर मिल जाती है, ना चाहते हुए भी ऐसा मानव का स्वभाव है, कुछ गलती हो ही जाती है, इसको प्रमाद कहते हैं। और विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा का अर्थ है विप्रलिप्सा, इसको श्रील प्रभुपाद चीटिंग कहते थे, हम जितना नहीं है उससे ज्यादा अपने को दिखाना चाहते हैं। कोई कविता रच करके या कोई ग्रंथ लिख करके हम जो नाम चाहते हैं, हम चाहते हैं अपना सम्मान, तो उसमें हित की भावना उतनी नहीं होती है, लोगों के हित करने की भावना उतनी नहीं होती जितना अपनी पूजा की भावना होती है। हम ऐसा ग्रंथ लिखें कि सब लोग वाह वाह ही करें, तो इसको विप्रलिप्सा कहते हैं। वैदिक ग्रंथ है इसके लिए नहीं लिखे गए हैं, केवल मनुष्य समाज के हित पर विचार किया गया है। भगवान गीता बोल करके कोई अपनी प्रशंसा नहीं चाहते हैं, केवल हम लोगों के हित के लिए बोल गए। बार बार कहते हैं अर्जुन से कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा इसमें हित होगा, बक्षामि हित काम्यया, मैं तुम्हारे हित की भावना से बक्षामि इसको बोलूंगा, बोल रहा हूं। तो अन्य जो ग्रंथ हैं संसार में बहुत, वैसी भगवद गीता नहीं है, यह साक्षात भगवान की वाणी है। भगवान सबके परम हितैषी हैं, उनको कोई धन की मान की अपेक्षा नहीं है कि इसके लिए उन्होंने ग्रंथ दे दिया। ग्रंथ दिया करुण हृदय से मनुष्य को सुखी करने के लिए, इसलिए कभी भी वैदिक ग्रंथों की निंदा नहीं सुननी चाहिए, करना तो दूर की बात। भृगु मुनि बात करें कि तुम ब्राह्मण की और वेद की निंदा कर रहे हो, तुम पाखंडी हो जाओ। सेतुम विधारणम पुंसा, यही वेद और ब्राह्मण पुंसाम सेतुम विधारणम, पुरुषों के मनुष्यों के मर्यादा का विधारण करने वाले हैं, यही नियम बनाने वाले समक विधारण, ये विधायक हैं। सेतुम विधायक, पहले हम सोच रहे थे कि इस तरह से साप देते हुए क्रोध के बस में भृगु मुनि अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन भृगु मुनि का जो विचार है यह केवल क्रोध में ही नहीं है, उन्होंने जो विचार किया वो अच्छा मनुष्यों के हित के लिए। महर्षियों में सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान के अनुसार, इनकी बातें केवल क्रोध की नहीं है, इन्होंने किसी भी मनुष्य को शिक्षा दिया कि वेद और ब्राह्मण का सम्मान होना ही चाहिए, कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए। जय श्री प्रभुपाद।